सूरत मोहम्मद के बाद अब सूरत फत आपको ऐसी लगेगी कि जैसे नूरुन अला नूर। आइए देखते सूरत फत का मौजू क्या है। सकीनत, लिख ले इसके नाम के साथ सकीनत। मुश्किल हालात में कैसे मुतमईन रहना है और अल्लाह की मदद को पाने के क्या तरीके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना। ऐ नबी, हमने आपको खुली फतह अता कर दी ताकि अल्लाह आपकी अगली पिटली हर कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत की तकमील कर दे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए और तुमको ज़बरदस्त नुसरत बख्शे। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई ताकि अपने ईमान के साथ वह एक ईमान और बढ़ा लें। ज़मीन आसमान के सब लश्कर अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं और वो अलीम भी है और हकीम भी है। इसने ये काम इसलिए किया ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल कर दे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनसे इनकी बुराइयों को दूर कर दे। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है। इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुश्रिक मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमान हैं। बुराई के फेर में वो खुद आ गए, अल्लाह का गजब इन पर हुआ और उसने उन पर लानत की और इनके लिए जहन्नम मुहैया कर दी जो बहुत बुरा ठिकाना है। वलिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्द वकानल्लाहु अजीजन हकीमा। जमीन आसमान के लश्कर अल्लाह ही के कब्जे कुदरत में है, वो जबरदस्त भी है और हकीम भी है। सूरत फतह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक वाक़े का इशारा है जिसकी बुनियाद पर ये सारी बातें हुईं। मुसलमान हिजरत करके मक्का से मदीना आ चुके थे। सब के दिल में खाना काबा की मोहब्बत थी लेकिन चूंकि वापस जाना खतरे से खाली नहीं था लिहाजा हिजरत को किए हुए 6 साल गुजर चुके थे और मुसलमान वापस नहीं गए और अल्लाह के नबी खुद भी खाना काबा को मिस करते थे। ख्वाब के जरिए आपको दिखाया गया कि आप खाना काबा में गए हैं और आपने उमरा किया। नबी का ख्वाब एक वही की किस्म होती है। आपने अगले दिन लोगों को कहा कि तैयारी करो, हम उमरे पे जाएंगे। जब उमरे की नीयत से गए तो सभी के दिल में मोहब्बत थी। 1400 सहाबा तैयार हो गए फौरन कि हम जाएंगे। हज उमरा करना किसको अच्छा नहीं लगता, और वो लोग जो वहां से निकले हुए थे। मुसलमान बिल्कुल अमन के साथ एहराम पहने हुए हदी के जानवर साथ लिए हुए मदीना से मक्का आए। खाना काबा के बिल्कुल करीब यानी मक्का के भी बाहर थे तो कुफार ने रोक दिया, गोया कि आपके लिए एंट्री वीजा नहीं दिया। हालांकि उनको कोई हक नहीं था, ये उनकी अपनी रिवायात के भी खिलाफ था कि किसी को हज और उमरे से रोके। फिर वहां अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाके उनको बताओ कि हमको लड़ाई की नीयत से नहीं आए, हम उमरा करने आए हैं और तुम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन वहां वन साइडेड किस्म की एक सुलह हुई जिसको सुलह हुदैबिया के नाम से हम जानते हैं, जिसकी हर शर्त बज़ाहर इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थी और अल्लाह के नबी ने उनकी हर बात को ओके कर दिया। ओके हत्ता कि हज़रत उमर ने उस मौके पे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया कि अल्लाह के नबी अब दब के सुलह क्यों कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि उमर, तुम्हें नहीं पता जो अल्लाह जानता है। और इस सुलह से वापसी पे जब मुसलमान टूटे हुए दिलों के साथ आ रहे, आप सोचिए यहाँ से जहाज़ों में बैठकर आप जाएं और आपको सऊदी अरब का वीज़ा ना मिले, वापस आ जाएं तो क्या हाल होगा। और वो जो इतना लंबा सफ़र तय करके गए थे, दिल टूटे, दुखी, परेशान, और डर होता है ऐसे वक्त में साथियों में फूट पड़ जाए और वो लीडर से बदगुमान हो। लेकिन अभी मुसलमान मक्का से मदीना पहुँचे नहीं, रास्ते में सूरह फतह नाजिल हो गई, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, और वही सुलह हुदैबिया फतह मक्का की दलील बनी। उस वक्त तो मक्का वालों ने जो शरायत बांधी थी वो सरासर उनके हक में थी लेकिन वो उन शरायत को पूरा ना कर सके और 2 साल के अंदर यानी अहद चिकनी की जिसको अल्लाह के नबी कभी बर्दाश्त नहीं करते थे और फिर आपके जरिए अल्लाह ने मक्का को फतह कराया। ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। मेरे और आपके लिए इसमें एक बात है गौर की, और वो क्या है कि जब एक इंसान हकीकत में दीन के साथ संजीदा होता है तो उसकी ज़िंदगी का हर फैसला दीन को सामने रख के होता है। अल्लाह के नबी अगर अपनी ज़ात को देखते तो सुलह हुदैबिया में न जाने क्या कुछ मसले खड़े कर देते। तो आज मुझे और आपको इस सूरत को सुनते हुए यही दुआ करनी है कि अल्लाह आज हमें भी और दीन के नाम पर काम करने वालों को अपनी ज़ात के बुत से निकालकर दीन और दीन की खैर की तरफ डाल दे। फिर फरमाया नबी, हमने आपको शहादत देने वाला, बिशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा ताकि लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। यानी रसूल का साथ दो, इसकी तौजीम और तौकीर करो और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहो। कल रात का दर्स इसी मौजू पे था। आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं होगी वहाँ, लेकिन मजमून बड़ा स्ट्रांग था। रमजान की रातें, ताक रातें, इबादत, क़ियामुल्लैल या सहरियाँ, इफ्तारियाँ, बच्चों के लिए प्रोग्राम, बड़ों के लिए क़ियामुल्लैल, क्या मकसद है इसका? यही मकसद है जो इन आयतों में और आगे भी आ रहा है। अल्लाह के नबी की जिंदगी का मकसद क्या था? कि आप लोगों को हक की गवाहियां दें। आज आप अगर तो इन सारी चीजों पे एक एक मिनट लगा के देख ले बाद में घर बैठकर, तो आपको समझ आ जाएगा कि नबी का किरदार क्या था। सारी जिंदगी आपने लोगों को अल्लाह से जोड़ने में गुजार दी, और आप और मैं अल्लाह के नबी का क्या हक दें? क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, खत्म? नहीं, तूमिनु बिल्लाहि व रसूली, ठीक है, कलमा पढ़ लिया, उसके बाद वतुअज़्ज़िरूहु, इज्जत देनी पड़ेगी, वतुवक्किरूहु, उनका वक्कार करना पड़ेगा, और अल्लाह के नबी के मिशन का राही बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। अब हुआ क्या कि जब मुसलमानों ने हजरत उस्मान को वहां भेजा कि जाके निगोसिएशन करें और अमन से बता दें कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं, उधर हजरत उस्मान मक्का में गए, इधर खबर फैल गई कि लोगों ने हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया। उस्मान का कत्ल एक एम्बेसडर का कत्ल था, एक कासिद का कत्ल था, जो उनके अपने रिवाज के मुताबिक जंग की दावत थी। अब मुसलमानों के लिए ये बहुत क्रिटिकल वक्त था। आप सोचिए, अल्लाह के नबी के दामाद भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और इस्लाम के दाई बनकर गए थे। तो आपने फिर सहाबा को जमा किया एक दरख्त के नीचे और उनसे एक बैत ली थी, प्लेज लिया था, और वो क्या था, आइए देखिए। इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउनल्लाह, ए नबी, जो लोग तुमसे बैत कर रहे थे वो दरअसल अल्लाह से बैत कर रहे थे, इनके हाथ पर अल्लाह का हाथ था। अब जो इस अहद को तोड़ेगा उसके अहद छिकनी का बबाल इसके अपनी जात पर होगा, और जो इस अहद को वफा करेगा जो इसने अल्लाह से किया तो अल्लाह करीब इनको बड़ा अजर अता करेगा। ये है खूबी 1400 सहाबा की, असहाबुल बैत कहा जाता है इनको, बैत रिजवान भी कहते हैं इसको। बगैर हथियारों के लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि अच्छा, इन्होंने हमें चैलेंज किए, अब मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन इस्लाम को पीछे नहीं करेंगे। और ये उन खुशकिस्मत लोगों में कि जिनको दुनिया में जन्नतों की खुशखबरियाँ मिल गई। अपने ऊपर लेके सोचिए, हम ऐसे वक्तों में कितने कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। हम तो ऐसे वक्तों में पीछे दुबक के बैठना पसंद करते हैं, नहीं वी कैंट, हालात नहीं है, वो नहीं है। तो जिंदगी में याद रखिए, कभी बदर आती है तो कभी ओहद है, तो कभी सुलह हुदैबिया भी आती है। और अल्लाह के नबी के सहाबा इस बेदर्दी से काम करने वाले थे, इसलिए इस्लाम गालिब हुआ। दुआ करते हैं अल्लाह आज भी इस्लाम को ऐसे ही हीरे दे दे कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेल्फलेस किस्म के एफर्ट्स करें और दुनिया को इस्लाम का तोहफा दे दें। ए नबी, बदवी अरबों में से जो लोग पीछे छोड़ दिए गए वो अब आकर जरूर तुमसे कहेंगे, हमें अपने मालों और अपने बाल बच्चों की फिक्र ने मशगूल कर रखा है, आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। आज भी उम्मत मुस्लिमा का यही मसला, कहीं किसी से मिले, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत खुशी होती है, आप भी आइए ना, नहीं वो घर वो बच्चे, हम से आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे हमें दुआओं में शामिल रखें। याद रखिए, जब इस्लाम को आपकी ज़रूरत हो और आप वहाँ मौजूद ना हो तो आप दुआओं से महरूम हो जाएंगे। दुआएं उसी को मिलती हैं जो दुआएं लेता है। अल्लाह की, फरिश्तों की और नबियों की दुआएं लेनी है ना, तो आज अल्लाह के इस दीन के लिए हमें अपनी कमर को बांधना है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। यकुलू नबी अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, ये लोग अपनी जुबानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, इनसे कहना अच्छा यही बात है, तो कौन है तुम्हारे मामले में अल्लाह के फैसले को रोक देने का कुछ इख्तियार रखने वाला, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या नफा बख्शने वाला है कोई? अल्लाह से लाभ लाता है कोई है साथ जो उसको रोके? अल्लाह ताला जलजला लेकर आता है, कोई दुनिया का पीर फकीर जिंदा मुर्दा कोई ताकत रखता है कि उस जलजले को रोक ले? तो जिसके हाथ में हमारा नफा नुकसान है, फिर हमें उससे कितना डरना है? और तुम्हारे अमाल से तो अल्लाह बाखबर ही है, मगर असल बात वो नहीं जो तुम कह रहे हो, बल्कि तुमने यूं समझा कि रसूल और मोमिनीन अपने घर वालों में हरगिज़ पलट कर ना आएंगे, और ये ख्याल तुम्हारे दिलों को बहुत भला लगा और तुमने बहुत बुरे गुमान किए और तुम सख्त बदबातिन लोग हो। क्या पता चला, मुनाफिक को इस्लाम की फतह की उम्मीद ही नहीं होती, इसलिए जब नेकी का मौका आता है तो वो ये कहकर पीछे हट जाता है, अरे ये कोई वक्त है, आज अभी कौन सी इस नेकी का वक्त है, और ये तो खुदकुशी है और वो है। असल में अंदर बुजदिली होती है। दीन पे अमल करना बहादुर लोगों का काम है। बुजदिल, कावड़, स्टिंजी लोग दीन पे नहीं चल सकते। बस वो किसी तरह बचते बचाते जहन्नुम से बच के जन्नत में पहुंच जाए, बहुत है उनके लिए। दीन का काम करना है, दिल बड़े करें, हौसले बुलंद हो, तकलीफों परेशानियों बीमारियों को वजह ना बनाए, क्या होगा? आप देखिए ये छोटे छोटे टेस्ट होते हैं मेरे और आपके, और हम उस वक्त छुट्टी लेके घर जा जाते हैं और सो चुके होते हैं, सॉरी हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकते, हमसे फोकस नहीं हो रहा, हम बैठ नहीं पा रहे, हमसे ये काम नहीं होगा। उसी दिन फरिश्तों के पास अल्लाह ने एक मैसेज देना था कि इस बंदे ने मुश्किल हालात में ये काम किया, जाओ इसका नाम ऊपर की जन्नत में डालो। जिस वक्त हमें दर्जे मिलने होते हैं ना, हम उस वक्त रुखसतें लेकर वापस जा चुके होते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मुश्किल हालात में भी नेकी पे जमने वाला बना दे। अब हुआ क्योंकि उस जंग में तो गए नहीं, अगली किसी जंग में जब बहुत माले गनीमत की उम्मीद थी तो उस वक्त क्या होना था उसका जिक्र आगे आ रहा है। वमल्लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही फइन्ना अतदना लिलकाफिरीन सईरा। अल्लाह और उसके रसूल पर जो लोग ईमान न रखते हों, ऐसे काफिरों के लिए हमने भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है। आसमान और जमीन की बादशाही का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे माफ करे और जिसे चाहे सजा दे, वो गफूर और रहीम है। दुआ करे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे मेरी गलतियों पे ना पकड़ना। और अब मुनाफिकों की कुछ और बातें, और जब तुम माले गनीमत हासिल करने के लिए जाने लगोगे तो ये पीछे छोड़े जाने वाले लोग तुमसे जरूर कहेंगे कि हमें भी अपने साथ चलने दो। ये चाहते हैं कि अल्लाह के फरमान को बदल दें। इनसे साफ कह देना कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते। यानी मुश्किलों में पीछे रहने वाले आसानियों में साथ चलना चाहते हैं। जब माले गनीमत मिलने की उम्मीद, प्रोटोकॉल मिलने की उम्मीद, अच्छी इज्जत खातर होने की उम्मीद, कहते हैं हम भी चलेंगे। अल्लाह कहते हैं नहीं, कि तुम घर बैठो, तुम्हें इस वक्त जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अल्लाह पहले ही फरमा चुका है। ये कहेंगे नहीं, बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो, हालांकि बात हसद की नहीं है, बल्कि ये लोग सही बात को कम ही समझते हैं। इन पीछे छोड़े जाने वाले बदवी अरबों से कहना कि अन करीब तुम ऐसे लोगों से लड़ने के लिए बुलाया जाएगा जो बड़े जोर आवर हैं, तुमको इनसे जंग करनी होगी या वो मती हो जाएंगे। इस वक्त अगर तुमने हुक्मे जिहाद की इताअत की तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और फिर अगर इसी तरह तुमने मुंह मोड़ा जिस तरह पहले मोड़ चुके हो तो अल्लाह तुमको दर्दनाक सजा देगा। क्या पता चला, जो कौम जिहाद का इनकार करती है फिर अल्लाह की पकड़ का शिकार हो जाती है। और ये जो फायदों के हरीस होते हैं ना, फायदे देखकर दीन की तरफ आने वाले, सेंक्शंस लेते हैं, पहले पहले कमिटमेंट्स लिखाते हैं कि हमारा कुछ जाएगा तो नहीं, हमें कुछ देना तो नहीं पड़ेगा, हमारे लिए कोई रुख्सत तो होगी। ऐसे लोग जो आप कह लीजिए कि अपने साथ एक डिफेंडर लेकर आए, वो दीन के काम के नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया और आप साथ देखते हैं कि पीछे गार्डमैन भी है, गन वन रखी भी है, और वो जिधर जा रहा है आपके उसके पीछे, आप कहते हैं भाई ये कौन है? तो कहेंगे असल में मुझे आपसे खतरा है ना, कहीं आप मुझे मार ना दें, ये मेरा गार्ड मेरे साथ आया। सच बताए आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे निकल जाए, मैं आपको चोर लगता हूँ, मैं आपको मारने में कातिल हूँ, आपको मेरे पर इतना एतबार नहीं है, आपको तो अच्छा नहीं लगा। आप इसी को सोचिए, जब लोग अल्लाह के दीन में ले आए और अपनी अकल के गार्ड को साथ लेकर आए कि ये तुम जरा चेक करना, ये जो दावत दी जा रही है नेकी की, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं, कुछ माल तो नहीं देना पड़ेगा, कोई वक्त तो नहीं लगेगा, कुछ ये तो नहीं, अच्छा चलो अकल जरा बताओ, करूं क्यों नहीं करूं, तो जिस वक्त ये कैलकुलेटिंग माइंड लेकर हम दीन में आते हैं ना, अल्लाह कहते हैं गेट आउट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे लोग, तुम भाग जाओ। और आप अब इन सूरतों में देखेंगे अल्लाह का एक स्टाइल है, आते हो तो शौक से और जाते हो तो शौक से जाओ, बात हो गई, हुज्जत तमाम। यहां तक तो कुरान का मिजाज मुझे भी समझ आ गया, आपको भी आ गया। नो इन्फोर्समेंट, अल्लाह फोर्स नहीं करेगा मुझे और आपको, लाइक राह पे दे, बैठो तो इज्जत समझ के बैठो, शौक से आओ, ऑनर समझो, हम्बल दिल के साथ आओ, आजजी के साथ आओ, अगर अभी ये सब नहीं है तो जाओ, अभी कुछ और वक्त इंतजार करो। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझते, वो हमेशा फायदों के वक्त इस्लाम के दोस्त और नुकसान के वक्त इस्लाम के दुश्मन। अल्लाह ताला कहते हैं इनको पीछे कर दो, ऐसे लोगों का कोई उजर सच्चा नहीं, इनके एप्लीकेशंस को फाड़ दो, इनके उजर बहाने बिल्कुल झूठे हैं। और इसके बरक्स फरमाया, हाँ मगर कुछ लोग ऐसे हैं, लेइस अलल-अमा हरज वलाल-हारजी हरज, फरमाया हाँ अगर अंधा लंगड़ा और मरीज जिहाद के लिए ना आए तो कोई हरज नहीं, उजर वाले लोग हैं, इनका जेन्युइन रीजन थी, ये नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, अगर बैठ के कर लें वो काम कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह इसे उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, और जो मुंह फेरेगा इसे वो दर्दनाक अजाब देगा। 3 सेकंड तक गौर करें, आज उम्मत मुस्लिमा को जो सजा मिल रही है ना ये मुंह फेरने की है, पीछे भी सूरत में देखा यहां भी, तवल्लो जाओ गेट आउट, तुम अल्लाह के दीन से मुंह फेरते हो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम तबलीग से मुंह फेरते हो गेट आउट, तुम दावत से मुंह फेरे हुए जाओ, तुम्हें जिहाद अच्छा नहीं लगता जाओ, तुम्हें 5 वक्त की नमाज अच्छी नहीं लगती जाओ, बस जाओ छोड़ दो इस दीन को, तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है दीन को, इतना दो टोक अंदाज है ना तुम्हें, धमकियां कहीं डरावे, अल्लाह को पता किसकी क्या मजबूरी है।